मनुज देवता बने यह धरती स्वर्ग समान। जियो फरवरी 2010 परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी। देवता स्वर्ग और कल्पवृक्ष सब यहीं इसी धरती पर। 8 नवंबर 1977 का प्रवचन। मना एक कल्पवृक्ष। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियो भाइयो,
कल मैं आपको पंचकोशों की चर्चा के दौरान तीसरे कोश की मनोमय कोश की बात बता रहा था। यह सबसे बड़ा देवता भी है और असुर भी। इसे साध लिया जाए, परिष्कृत कर लिया जाए तो यह कल्पवृक्ष है, अन्यथा फिर आप कुछ भी कह लीजिए।
मन को साधने का सरल तरीका है एकाग्रता का अभ्यास करना। मित्रों, हमारे जीवन में एकाग्रता की कला, एक निष्ठा की कला, एक चिंतन की कला होनी ही चाहिए।
हमें एकाग्रता का चिंतन उसी तरह से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, यह मैं आपकी विधियों को देख करके, मनस्थिति को देख करके बताता हूँ कि आपका मन किस तरह का है और किस काम में एकाग्र किया जा सकता है, कौन से आपके रुचि के विषय हैं और किस रुचि के विषय में उसे लगाया जा सकता है।
चलिए मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ।
ध्यान करने में हमेशा सुंदर चीजों का ध्यान कराया जाता है। क्यों साहब?
श्री कृष्ण भगवान ऐसे ही सुंदर थे?
नहीं बेटे, ऐसे नहीं थे।
तो कैसे थे श्री कृष्ण भगवान, आप ही बताइए।
ध्यान कैसे करें?
मित्रों, हो सकता है श्री कृष्ण भगवान ऐसे रहे हों, काले से और ऐसा छोटा सा मुंह, छोटी छोटी आंखें।
अगर भगवान श्री कृष्ण ऐसे रहे हों तो क्या पता चलता है?
महाराज जी, हमने तो बहुत सुंदर देखे हैं। हाँ बेटे,
आपने सुंदर देखे हैं।
उसी सुंदरता को लेकर हम अपने मन को एकाग्रता के केंद्र पर एकत्रित करते हैं। जो चीजें दृष्टि के साथ मन को एकाग्रता के केंद्र पर एकत्रित करते हैं,
जो चीजें दृष्टि के साथ सुंदर लगे उन्हीं पर मन को केंद्रित किया जाता है। देवी देवता इसलिए सुंदर बनाए जाते हैं ताकि उनके सौंदर्य में अथवा दूसरी चीजों अथवा उसका प्रिय भाग जो भी हो जिसमें आपका मन तन्मय होता चला जाए।
कैसे तन्मय होता चला जाएगा, कैसे एकाग्रता आती चली जाएगी?
जिस एकाग्रता की वजह से भाप कमाल दिखाती है। भाप जब चारों ओर फैलती रहती है तब उससे कोई काम नहीं चलता। भाप जब एकाग्र हो जाती है तो क्या हो जाता है, तब प्रेशर कुकर मिनटों के भीतर उसी भाप से खाना पका देता है। उसी भाप से रेल के इंजन चालू हो जाते हैं। उसी भाप से न जाने क्या क्या हो जाता है। भाप की ताकत बहुत बड़ी है लेकिन जब वह फैलती है तो उसकी ताकत क्या हो सकती है? कुछ नहीं। बारूद को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, बारूद की ताकत कितनी बड़ी हो जाती है कि वह बंदूक की गोली को सनसनाती हुई ले जाती है।
अगर उसका बारूद निकालकर उस बारूद को जमीन पर फैला दें और दियासलाई लगा दें तो वह भक हो जाएगा, फुस हो जाएगा।
लेकिन वही बारूद जब कारतूस में भर दिया जाता है तो शेर को मार सकता है, हाथी को मार सकता है।
फैली हुई बारूद में न आवाज होगी, न गोली चलेगी, बस धुआं देकर, हवा देकर वह फुस से निकल जाएगी।
युग व्यास हैं हम।
मित्रों,
हमारी जिंदगी में बिखराव ही बिखराव भरा पड़ा है।
सारी जिंदगी भर बिखराव रहा, न कोई दिशा रही, न कोई धारा रही, न कोई लक्ष्य रहा, न कोई हंसी का विषय रहा।
कभी इधर कभी उधर, कभी पूजा कभी पैसा, कभी यह कभी वह। एक दिशा में अगर हम चलते हुए चले गए होते तो हमने कितनी लंबी मंजिलें पार कर ली होती।
बेटे, हम अपने जीवन में एक निश्चित दिशा में चलते हुए चले गए। भारतीय धर्म और भारतीय अध्यात्म को हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, विषय बनाया।
पिछले 50 सालों में
15 साल तो ऐसे ही बिट्टे खाते में चले गए।
यह स्वर्ण जयंती वर्ष है,
लगभग 77 वर्ष होने को आते हैं। 50 वर्ष में हमने कितनी लंबी मंजिल पार कर ली।
व्यास जी ने जितने लंबे समय में 18 पुराण लिखे होंगे लगभग उतना ही समय हमको पुराणों का अनुवाद करने में लगा है, वेदों का अनुवाद करने में लगा है। व्यास जी की उम्र और हमारी उम्र बराबर है। व्यास जी ने जो काम किए थे उनको तौल लें और हमारे काम को तौल लें, दोनों को तराजू पर रख लें। व्यास जी की मदर लैंग्वेज संस्कृत थी इसलिए उन्होंने संस्कृत में लिख दिया। हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है इसलिए हम हिंदी में लिखते रहते हैं। दोनों का पलड़ा बराबर है, दोनों को बराबर मेहनत पड़ी है, दोनों का श्रम बराबर पड़ा है, इसमें कोई फर्क नहीं है।
एकाग्रता का चमत्कार। अच्छा महाराज जी,
तो आप व्यास जी के बराबर है? हाँ बेटे, हम दावा कर सकते हैं कि हम व्यास जी से बड़े हैं।
व्यास जी को एक स्टेनोग्राफर मिला हुआ था। कौन? गणेश जी। व्यास जी बोलते चले जाते हैं और गणेश जी फटाफट लिखते चले जाते हैं। इधर बोलना शुरू होता है, उधर लिखना।
1.5 घंटे में हम जितना बोलते हैं उसे लिखना शुरू करिए, कितना समय लगेगा? जो हमने बोला है उसे एक आदमी 3 दिन में लिखेगा।
बोलने में व्यास जी फटाफट बोलते चले जाते थे और गणेश जी टाइप करते जाते थे, लेख बनाते जाते थे।
18 पुराण 2 आदमियों का लेबर है बेटे, हमारे पास तो कोई टाइपिस्ट नहीं है, कोई स्टेनो नहीं है, हमने अपने आप पढ़ा, अपने आप बोला, अपने आप लिखा।
तो महाराज जी,
आप में व्यास जी से ज्यादा ताकत है।
हाँ बेटे, ज्यादा ताकत है,
हमने स्वयं मेहनत की है, यह कैसे कर ली, कैसे भी नहीं कर ली।
एकाग्रता और एक दिशा, दूसरी तरफ न हमारा मन चला, न हमारा जी चला, न भटकाव आया, न हम इधर उधर भटके।
मुसीबतें अपने ढंग से आती रहीं, कठिनाइयां अपने ढंग से आती रहीं, लेकिन हम अपनी मंजिल पर आंख बंद करते हुए चलते चले गए। देवता है मनो में कोश।
मित्रों,
लोगों ने अपनी बातें कहीं, पर हम सबको नमस्कार करते हुए चले गए।
अरे गुरुजी, आज तो रुक जाइए।
नहीं बेटे, जरूरी काम है, हमको जाना है।
अच्छा तो चाय पी लीजिए। बेटे अब तो चाय वहीं पियेंगे। खींचने वाले को, लुभाने वाले को, हर एक को, उठाने वाले, गिराने वाले, धमकाने वाले को, हमने हर एक को नमस्कार किया और कहा कि हमें चलने दीजिए, लंबी मंजिल पार करनी है,
हमको अपनी दूरी पार करनी है।
भटकाए मत, रोकिए मत बेटे, हम यहाँ तक चलते चले आए।
यह क्या है?
यह है मनोमय कोश की साधना, एकाग्रता की साधना।
यह मनोमय कोश देवता है, इसके आशीर्वाद कितने हैं बेटे? इसके इतने आशीर्वाद हैं कि देवी देवता हमें क्या दे पाएंगे,
गणेश जी जी, शिव जी, हनुमान जी क्या दे पाएंगे?
जब वे अपनी सेवा करने वाले पुजारियों को नहीं दे पाए तो हमको क्या दे पाएंगे? 2 शक्तियां अपने भीतर।
साथियों, चौथा वाला कोश है हमारा विज्ञान में कोश।
हमारे भीतर दैवी और आसुरी 2 सत्ताएं, 2 शक्तियां काम करती हैं। अपने भीतर दोनों की रसाक्षी होती रहती है, दोनों अपनी अपनी ओर खींचने के लिए इसी तरह काम करती रहती हैं, जैसे कि 2 पार्टियां इलेक्शन में खड़ी हो गई हैं। दोनों के प्रचार तंत्र मजबूत हो गए हैं, दोनों ने अपनी अपनी बातें कहनी शुरू कर दी हैं। इन दोनों का इलेक्शन अपने भीतर होता रहता है, दोनों की लड़ाई भीतर जमी रहती है। इनमें से एक असुर है और एक देव। अगर हम देव के पक्ष में वोट देना शुरू करें, देव का हम समर्थन शुरू करें, तो बेटे हमारे भीतर वे क्षमताएं जागृत हो सकती हैं, जो हमको स्वर्गीय जीवन जीने का आनंद दे सकती हैं। इसी जीवन में हम देवताओं के तरीके से इसी शरीर में शानदार जीवन यापन कर सकते हैं।
5 विशेषताओं वाला विज्ञान में कोश। मित्रों, विज्ञान में कोश देवत्व का कोश है, जिसका फल है स्वर्ग और जिसका परिणाम है व्यक्तिगत जीवन में देवत्व का विकास। तो महाराज जी,
चौथे वाले कोश के रूप में आप हमें साधना कराएंगे? हाँ बेटे, ब्रह्मवर्चस्व में कराएंगे। देवत्व की 2 धाराएं हैं। देवता कैसा होता है?
देवता का दृष्टिकोण दिव्य हो जाता है।
सामान्य मनुष्यों का दृष्टिकोण बड़ा घटिया, बड़ा ओछा, बड़ा छोटा, बड़ा बचकाना, बड़ा कमीना, गया गुजरा होता है। देवता वह है जिसके अंदर दिव्य दृष्टि होती है।
दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? दूर की दृष्टि, श्रेष्ठता की दृष्टि, विवेक की दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं।
जिसके सोचने के तरीके, विचार करने के तरीके सब ऊंचे किस्म के होते हैं, घटिया किस्म के नहीं होते हैं, उनका नाम देवता है। देवता की 5 विशेषताएं बताई गई हैं। 5 कोशों में हमारा एक यह भी देवता है।
कौन? विज्ञान में कोश।
विज्ञान में कोश के 5 देवता हैं। इसके 5 मुंह हैं।
मित्रों,
विज्ञान में कोश के उसी तरह 5 मुंह हैं, जिस तरह गायत्री माता के 5 मुंह हैं।
हनुमान जी के भी 5 मुंह होते हैं।
यहाँ परमार्थ आश्रम के बगल में, जहाँ हमारा ब्रह्मवर्चस्व है, उसके बगल में एक मंदिर में एक हनुमान जी हैं।
उनके 5 मुंह हैं। अच्छा साहब,
और किसके हैं? और बेटे शंकर जी के 5 मुंह होते हैं। शंकर जी का एक नाम पंचानन भी है।
उनके 5 मुंह होते हैं। गायत्री माता के भी 5 मुंह होते हैं।
5 मुंह हर देवता के होते हैं।
5 मुंह से मतलब है 5 विशेषताएं।
अगर हमारे दृष्टिकोण में ये 5 विशेषताएं आ जाएं, तो हम आप्तकाम हो जाएं, देवता हो जाएं। देवलोक में क्या होता है? कल्पवृक्ष होता है। कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसके नीचे बैठकर हर चीज, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देवता की हर मनोकामना पूरी हो जाती है।
कामना की दृष्टि से कोई परेशानी नहीं पड़ती।
हवेश आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। बेटे, जिसको आप सांसारिक कामना कहते हैं, वह जलती हुई आग है, जो आज तक किसी की पूरी नहीं हुई और न कभी किसी की पूरी हो सकती है। एक कामना खत्म नहीं हो पाती कि दूसरी कामना हावी हो जाती है। जब तक हम BA पास नहीं कर पाते, डिग्री नहीं प्राप्त कर पाते, तब तक MA की ललक तैयार हो जाती है। शादी हो करके जब तक खुशी मनाने का मौका आ नहीं पाता, तब तक बच्चे की हविश खड़ी हो जाती है। कन्या हो गई तो बेटे की हविश हो जाती है। 1000 रुपये हमने कमा लिए तो 2000 की हविश कायम हो जाती है। हविश उस वक्त तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक सारी दुनिया की सारी दौलत एक आदमी के चरणों में न आ जाए।
चाहे सारी दुनिया की दौलत को कमाने वाले का नाम सिकंदर हो, रावण हो या हिरण्यकशिपु।
कोई चैन मिला था क्या उन्हें?
किसी को चैन नहीं मिला। शांति मिली, किसी को शांति नहीं मिली। तो फिर कल्पवृक्ष से मनोकामनाएं कैसे पूरी हो सकती हैं?
मनोकामना में बेटे दृष्टिकोण बदल जाता है। दृष्टिकोण में भौतिक इच्छाएं जो हैं, हमें खा डालती हैं।
कहा भी गया है, भोगा न भुक्ता वयमेव भोक्ता, अर्थात भोगों को हम भोग नहीं पाए लेकिन भोगों ने हमको भोग लिया।
इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर पाए पर इच्छाओं ने हमको खा लिया। इच्छाओं का स्वर बदल दें।
मित्रों, इच्छाओं का स्तर अगर बदल दिया जाए तो हमारी इच्छाएं वह हो सकती हैं जो मानवीय महानता से संबंध रखती हैं। हम ईमानदार बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, लोकसेवी बनेंगे, सैनिक बनेंगे, इसमें क्या रुकावट है? बताना जरा।
नहीं साहब।
एक मकान बनाएंगे तो जाइए बीमा कंपनी में दरख्वास्त दीजिए कि हमारा बीमा है और हमको 25,000 रुपया कर्ज दे दीजिए। महाराज जी,
मंजूर हो जाएगा। बेटे, हम कह नहीं सकते, शायद हो भी सकता है।
गवर्नमेंट के यहाँ लोन के लिए दरख्वास्त दीजिए, साथियों से मांगिए, बहनोई से मांगिए, साले से मांगिए कि साहब 20,000 दे दीजिए, शायद हमारा मकान बन जाए।
बेटे, हम कह नहीं सकते कि मकान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी जिंदगी में बनेगा कि मरने के बाद बनेगा, पर आपकी यह इच्छा सेकंडों में पूरी हो सकती है कि हम चरित्रवान बनेंगे, ईमानदार बनेंगे। एक सेकंड में आप वाल्मीकि के तरीके से डाकू होकर के भी यह फैसला कर लें कि हमको डाकू नहीं, संत बनकर जीना है। आप तुरंत महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं और एक सेकंड में बन सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है, श्रेष्ठ बनने में कोई रुकावट नहीं है। आपकी श्रेष्ठता की सारी मनोकामनाएं आज ही पूरी हो सकती हैं, अभी पूरी हो सकती हैं। हर आदमी मालदार है।
मित्रों, देवत्व की निशानियां मनोकामना की पूर्ति है।
सारे के सारे देवता कल्पवृक्ष के नीचे रहते हैं और उनका जीवन गोरा सुंदर हंसता हुआ और हंसाता हुआ रहता है। देवता वे हैं जो लेने की अपेक्षा देने का एहसास करते रहते हैं और देने का जो आनंद है, संतोष है, वह हर वक्त हर घड़ी उनको मिलता रहता है। क्यों साहब, पैसा नहीं हो तब तो हम कैसे देंगे? बेटे, मैं पैसे की नहीं कहता हूँ, पैसा बड़ी वाहियात चीज़ है। पैसे जिनके पास जमा हैं वे भी मुसीबत में मर रहे हैं और जिनको यह पैसा देंगे उनकी भी आफत आ जाएगी। पैसा सबसे घटिया वाली संपदा है। काफ़ी संपदाएं हमारे पास हैं, अकल की संपदा, श्रम की संपदा, मन की संपदा, भावनाओं की संपदा। ये संपदाएं हर आदमी के पास पूरी तरह से भरी पड़ी हैं। हर आदमी कुबेर की तरह से मालदार है। देवता बने।
मित्रों,
आप चाहें तो दूसरों को मोहब्बत दे सकते हैं, दूसरों को दिशा दे सकते हैं, दूसरों को मिठास दे सकते हैं। आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं, आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं, आप जाने क्या क्या कर सकते हैं। किसके लिए?
देने के लिए।
आप अपनी बीबी को प्यार दे सकते हैं, अपने बच्चे को संस्कार दे सकते हैं, अपने पड़ोसी को सहकार दे सकते हैं। देने के असंख्य तरीके हैं। देने पर आदमी उतारू हो जाए तो उसके पास देने को असंख्य चीजें हैं। देवता उन्हें कहते हैं जो देने वाले होते हैं। पंचकोशों का जागरण करें, सिद्धियां पाएं।
इससे पूर्व आपने फरवरी 2010 की अखंड ज्योति में पढ़ा कि मन को एक कल्पवृक्ष बताते हुए पूज्यवर ध्यान करने की कला सिखा रहे हैं। मनोमय कोश की जागृति का ही परिणाम था कि वे युगव्यास की भूमिका निभा पाए। विज्ञान में कोश चौथे नंबर पर आता है। यह देवत्व के अभिवर्धन का कोश है जिसके परिणाम स्वरूप वातावरण स्वर्ग जैसा बनता है।
गुरुदेव कहते हैं कि हविष आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। जरूरत यही है कि हम अपनी इच्छाओं का स्तर बदल दें। देखा जाए तो हर आदमी मालदार है, उसके पास अगणित संपदाएं हैं जिन्हें देकर वह देवता बन सकता है। अब आगे इसी विज्ञान में कोश की सिद्धि एवं आनंदमय कोश के जागरण की परिणति के विषय में पढ़े। देवत्व क्या है?
मित्रों,
देवत्व का विकास कर सकना हमारे लिए विज्ञान में कोश में संभव है। हम यह कोशिश करेंगे कि आपके अंदर देवत्व के गुण पैदा हो जाएं तथा आपके अंदर लेने वाली वृत्ति, दानव की वृत्ति, असुर की यह वृत्ति की जो कुछ भी जहां भी मिले उसी को हजम करते चले जाएं, वह समाप्त होती चली जाए। नहीं साहब, हम साईं बाबा से लेते चलें, संतोषी माता से लेते चलें, आचार्य जी से लेते चलें, गणेश जी से लेते चलें। जो कोई भी चंगुल में फंस जाए उसका कचूमर बनाते चलें। बेटे, यह देवत्व की वृत्ति नहीं है।
देने का सुख।
देवत्व उसे कहते हैं कि जहां कहीं भी हम जाते हैं, यह वृत्ति लेकर जाते हैं कि दे करके आएंगे,
मन दे करके आएंगे, दान दे करके आएंगे, श्रद्धा भावना दे करके आएंगे।
किसी को खुशी देने का संतोष कभी आपने चखा ही नहीं है। मैं कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं? लेने का सुख तो आपने पाया है, लेकिन देने का भी सुख कभी आपने पाया है क्या? किसी को कुछ दिया भी है कभी? प्रेम दिया है किसी को, सहायता दी है, श्रद्धा दी है,
समाज को कुछ दिया है। दे करके देखिए और यह पाइए कि कितना ज्यादा संतोष मिलता है मनुष्य को।
आदमी अगर यह संतोष प्राप्त कर सकता है तो उस संतोष को करके, संतोष को खा खा करके आदमी देवता बन सकता है। देवता जहां कहीं भी रहते हैं, स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। देवता का निवास स्वर्ग में रहता है। संत इमर्सन हमेशा यह कहा करते थे कि मुझे नरक में भेज दो, मैं वहीं अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। आप अपना स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग कोई बना हुआ नहीं है, वह बनाया जाता है। ऐसे स्वर्ग से मुझे घृणा है।
महाराज जी, स्वर्ग कहाँ है?
बेटे, हमें नहीं मालूम है।
आपने स्वर्ग देखा है?
हमें नहीं मालूम है। पुराणों में जो किस्से कहानियां सुने हैं उससे हमको घृणा हो गई है। मुसलमानों से सुना है कि वहां शराब की नदियां बहती हैं और 70 हूर और 72 गुलफाम मिलते हैं।
बेटे, मैंने तो नमस्कार कर लिया है कि मैं तो स्वर्ग को जाऊंगा नहीं, अपने बदले किसी और को भेज दूंगा। मेरा तो सिनेमा का फोकट का टिकट आया तो कहूंगा कि मैं तो जाता नहीं, मेरे बदले का तू देखा।
स्वर्ग में मैं क्या करूंगा? शराब की नहरें वहां हैं जो पीने को मिलेंगी और हूर मिलेंगी, गुलफाम मिलेंगे, तो मैं उनका क्या करूंगा, बताना तो सही। अपने कमरे में मैं झाड़ू लगा लेता हूँ।
72 गुलफाम मिलेंगे तो मैं उनसे क्या काम कराऊंगा?
वे सब मुझे तंग करेंगे। और जो 70 हूरें मिलेंगी तो बता, मैं उनका क्या करूंगा? और शराब की जो नहरें मिलेंगी, बेटे, मैं उस नहर का क्या करूंगा? कोई बीड़ी पीता है और मुझे उसका धुआं लग जाए तो उल्टी आने लगती है। जब वहां शराब की गंध मिलेगी और उसमें से अल्कोहल ही अल्कोहल उड़ेगा तो मैं वहां रह करके क्या करूंगा?
मुझे ऐसे स्वर्ग से घृणा हो गई। पंडितों का घटिया स्वर्ग। मित्रों, मौलवी साहब से मैंने कह दिया कि मेरे नाम का अगर स्वर्ग का टिकट आवे तो आप ही ले लेना, मैं वहां नहीं जाता।
और पंडित जी से भी मैंने कह दिया है कि स्वर्ग लोक का कभी बुलावा आवे तो मेरी ओर से रेफ्यूज कर देना और कह देना कि गुरुजी मकान में नहीं है, बाहर चले गए हैं और उनका नाम पता हमारे पास नहीं है। सम्मन आवे तो मेरे मकान पर चिपका देना और यह लिख देना कि पाने वाला मिला नहीं, और उस स्वर्ग के वारंट पर रेफ्यूज लिख देना।
मित्रों, मैंने स्वर्ग को रेफ्यूज कर दिया कि मैं वहां नहीं जाना चाहता। पंडितों ने जो स्वर्ग बनाया है वह बड़ा घटिया स्वर्ग है।
कैसा है? उनके यहाँ भी वही चक्कर है।
वहां कल्पवृक्ष के नीचे मजा उड़ाने के लिए मिलेगा, खाना खाने के लिए मिलेगा, इंद्र देवता के यहाँ नाच देखने को मिलेगा। बेटे, मैं वहां नहीं जाता।
ना मेरे पास टाइम है, ना फुर्सत है।
नाच देख करके मैं क्या करूंगा? मेरे पास इतने सारे काम पड़े हैं, उन कामों को समेटूंगा या नाच देखूंगा?
अरे साहब,
वहां तो 24 घंटे नाच होता है।
नहीं बेटे, हम वहां नहीं जा रहे हैं।
स्वर्गीय वातावरण बनाया जाता है।
मित्रों,
स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग उसे कह सकते हैं जिसमें आदमी को असीम संतोष मिलता रहता है। संतोष वहां मिलता रहता है जहां मोहब्बत की धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। जब हम एक दूसरे के लिए सहकारिता की, सहायता की वृत्ति को लेकर के चलते हैं तो हमारा वातावरण स्वर्गीय बन जाता है। स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए, स्वर्ग पैदा करने के लिए हमारी वृत्तियों में उदारता का समावेश होना चाहिए। उदारता की यह वृत्ति हमारे मन में जितनी अधिक होती जाती है उतना ही हमारा वातावरण स्वर्गीय बनता जाता है और हम देवत्व को विकसित करते चले जाते हैं। देवत्व के कितने ही लाभ हैं।
देवता त्रिकालदर्शी होते हैं।
देवता आशीर्वाद दे सकते हैं। देवता वरदान दे सकते हैं। देवत्व का जैसे जैसे हमारे भीतर विकास होता जाता है, सिद्धियों की दृष्टि से, चमत्कारों की दृष्टि से हम अपने आप में एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं।
अस्तित्व है एक सूक्ष्म जगत का। मित्रों, हमारे भीतर एक सूक्ष्म जगत है। नहीं महाराज जी,
सूक्ष्म जगत नहीं होता, ये सब गप्पे हैं। बेटे, सूक्ष्म जगत गप नहीं है। अभी अभी साइंस ने, विज्ञान ने एक नई धारा, नई दिशा बना करके हमको दी है। क्या दिया है?
एंटी यूनिवर्स, एंटी मैटर, एंटी एटम आदि।
ये क्या है? बेटे, जैसे हम खड़े हुए हैं उसी तरह हमारे पीछे एक भूत रहता है।
गुरुजी,
कैसा भूत रहता है? बेटे, अभी हम धूप में खड़े हो जाएंगे और आपको छाया के तरीके से हमारे पीछे एक भूत दिखेगा।
महाराज जी,
भूत हैं? हाँ बेटे, भूत हैं। बेटे, जब हम नहीं रहेंगे इस शरीर में, तब हमारा एक भूत आएगा और घर वालों को तंग करेगा कि लाओ हमारा तर्पण करो।
अच्छा तो रहता है भूत?
हाँ बेटे, रहता तो है। यह जो विश्व है, इसके ठीक पीछे छाया के तरीके से एक एंटी यूनिवर्स है।
एंटी यूनिवर्स एक वास्तविकता। साथियों,
अब हम आपसे अध्यात्मवाद की बात नहीं कह रहे हैं। साइंटिस्टों के हिसाब से, नए साइंस के हिसाब से कह रहे हैं कि एक ऐसा एंटी यूनिवर्स है, एंटी मैटर है। इसके पीछे एक ऐसा रिएक्शन है जो यह कहता है कि अगर यह रिएक्शन हमारे हाथ में, हमारे काबू में आ गया, तो आदमी के हाथ में दैत्य की शक्ति आ जाएगी।
फिर आदमी इतना बड़ा होगा कि जैसे हिरण्यक्षिपु और हिरण्याक्ष, जो बगल में पृथ्वी को दबाकर भाग गया था। अगर आदमी भी भाग जाए तो अचंभे की बात मत मानना। एंटी मैटर, एंटी यूनिवर्स, एंटी एटम जैसे पदार्थों के बारे में कितनी चर्चा होती है।
इसके बारे में अखंड ज्योति में लिख चुका हूँ। यह मजाक नहीं है, वास्तविकता है।
मित्रों,
स्थूल के पीछे सूक्ष्म काम करता है। हमारा शरीर स्थूल है, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। स्थूल जगत के पीछे एक सूक्ष्म जगत काम कर रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, वह सब सूक्ष्म की प्रक्रियाओं से हो रहा है। दूरदर्शन से लेकर अतींद्रिय क्षमताओं तक जितनी विशेषताएं हैं, सब सूक्ष्म में से आती हैं। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद हम सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं। सूक्ष्म जगत में हम रहते थे और उसी सूक्ष्म जगत में हमारा विलय हो जाता है। मुद्दतों तक हम सूक्ष्म जगत में पड़े रहते हैं, फिर हम थोड़े दिनों के लिए स्थूल जगत में आ जाते हैं और फिर से सूक्ष्म में विलीन हो जाते हैं।
यह सूक्ष्म जगत भी ऐसा ही है जैसे कि हमारा स्थूल जीवन।
बेटे, अभी सूक्ष्म जगत के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है।
विज्ञान में कोश के जागरण की फलश्रुति। मित्रों, सूक्ष्म जगत के साथ संबंध मिलाने के लिए हमारा विज्ञान में कोश जब जागृत होता है, तो हमारी वे क्षमताएं विकसित हो जाती हैं।
अभी जो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, जो जाना नहीं जा सकता, ना जानने वाले उस विश्व के साथ क्या संपर्क मिला पाएं, जान पाएं और जरूरत के वक्त हम उसका इस्तेमाल भी कर सकें, यह सब विज्ञान में कोश के जागरण से संभव है।
मित्रों,
जान लेना ही काफी नहीं है। सूक्ष्म जगत को, जिसको हम दैवी शक्तियां कहते हैं, देवताओं की शक्तियां कहते हैं, भगवान की शक्तियां कहते हैं, ब्रह्मा की शक्तियां कहते हैं और न जाने क्या क्या शक्तियां कहते हैं। जिस तरीके से हवा में प्रकाश की शक्ति और दूसरी दिव्य शक्तियां काम करती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म जगत की इन दिव्य शक्तियों का भी हम अपने आप में व्यवहार कर सकें, इसका नाम है विज्ञान में कोश।
हमारे भीतर है एंटीना।
विज्ञान में कोश की क्षमताओं को विकसित करने के लिए कई मशीनें, कई एंटीना हमारे भीतर काम करते हैं। कौन कौन से एंटीना कार्य करते हैं? एक आज्ञा चक्र काम करता है, हृदय चक्र काम करता है और एक नाभि चक्र काम करता है। तीन बड़े बड़े एंटीना हमारे भीतर लगे हुए हैं, जो क्या से क्या कैच कर सकते हैं। अभी देहरादून में एक बहुत बड़ा एंटीना का उद्घाटन होने जा रहा है। आज तारीख क्या है?
23।
25 तारीख को होने जा रहा है। इंदिरा गांधी आने वाली है।
एक इतना बड़ा एंटीना लगा है कि उसके माध्यम से आप फ्रांस का टेलीविजन देखिए और दूसरी जगह के टेलीविजन देखिए। पहले जो एंटीना लगाया, उससे काम नहीं चलता था।
हरिद्वार में तो वह काम भी नहीं करता था।
अब यहाँ भी आ जाएगा। मसूरी का टेलीविजन देखिए, दूसरे देशों का टेलीविजन देखिए, दिल्ली का टेलीविजन देखिए।
अपनी लड़कियों के लिए एक टेलीविजन हम भी मंगा रहे हैं।
हमारी लड़कियां भी देखेंगी, यहाँ का देखेंगी, विदेशों के समाचार सुनेंगी। बस एक टेलीविजन यहाँ भी आ जाएगा। मित्रों,
एक एंटीना हमारे भीतर लगा हुआ है, जिसके भीतर राडार की शक्ति, बोलने की शक्ति, दिव्य दर्शन की शक्ति है।
संजय को जिस तरीके से महाभारत की सारी घटनाएं दिखाई दी थी, थोड़े दिन पीछे संजय की दृष्टि से ये लड़कियां भी टेलीविजन देखेंगी। मित्रों,
हमारा जो मूल एंटीना है, उसके माध्यम से हम सारे के सारे विश्व का न जाने क्या से क्या देख और क्या से क्या सुन सकते हैं। सिद्धियों की दृष्टि से विज्ञान में कोश के द्वारा हम सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। विज्ञान में कोश कैसे जगाया जा सकता है, इसकी थोड़ी सी जानकारियां अभी हमने पत्रिकाओं में दी हैं। पीछे फिर आपको बताएंगे कि धीरे धीरे आप किस तरीके से इस ओर अपनी सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं।
आनंद का स्रोत है आनंदमय कोश। मित्रों,
अंत में आनंदमय कोश आता है।
हमारे भीतर एक आनंद का स्रोत भरा हुआ पड़ा है।
हमारे भीतर एक ब्रह्मलोक भरा हुआ पड़ा है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इसमें क्षीरसागर है, जिसमें विष्णु भगवान सोए हुए हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं?
बेटे, इसी में रहते हैं।
यह जो ग्रे मैटर है, यही क्षीर सागर है। इसके भीतर जो सहस्रार चक्र है, वही हजार फन वाला सांप है।
इसी के भीतर मानसरोवर है।
इसी के भीतर जो सहस्रार चक्र है, वह कैलाश पर्वत कहलाता है।
सारे के सारे ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड की ध्रुव सत्ता, जैसे कि पृथ्वी का ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव आदि सभी अंतर्ग्रही शक्तियों को यह केंद्र ग्रहण करता है और दक्षिण ध्रुव में से निकालकर फेंक देता है। पृथ्वी के ध्रुव तक ये चीजें नहीं जाती।
इसमें से जो भी हवा, ब्रह्मांड में जो कुछ भी दैवीय, भौतिक, अभौतिक तीनों तरह की क्षमताएं हैं, हम उनको ब्रह्मांड में से ग्रहण कर सकते हैं, शरीर में धारण कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि जरूरत भर की रख सकते हैं और बिना जरूरत के निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं।
ब्रह्मविद्या का मर्म है यह। मित्रों, सहस्रार चक्र का जागरण हमारे आनंदमय कोश से संबंधित है।
यह हमारी अंतःविद्या है।
यह हमारी अध्यात्म विद्या है।
यह हमारी ब्रह्मविद्या है। परोक्षवाद के ढंग से नहीं, कहानियों के माध्यम से नहीं, वरन साइंटिफिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, प्रत्यक्षवाद के ढंग से आप इन्हें व्यवहार में किस तरीके से सारी की सारी अपनी पांचों विभूतियों को कैसे काम में ला सकते हैं और कैसे विकसित कर सकते हैं,
इससे सामान्य जीवन को असामान्य कैसे बना सकते हैं,
मनुष्य में देवत्व की झांकी कैसे कर सकते हैं,
व्यक्ति को श्रेष्ठ मनुष्य कैसे बना सकते हैं, यह सारी की सारी ब्रह्मविद्या की शिक्षा, ब्रह्मतेज की शिक्षा आपको ब्रह्मवर्चस के माध्यम से देंगे।
करें पंचकोशों का जागरण।
मित्रों,
पंचकोशों का जागरण मूलभूत बात है। पंचकोश किस तरीके से जागृत हो सकते हैं? पांच दूत, पांच देव, पांच नौकर जो आपके भीतर समाये हुए हैं, इनको योग्यतर एवं बलवान बना करके अपने काम मेला करके आप किस तरीके से बड़े आदमी बन सकते हैं, यह सारी की सारी शिक्षा अध्यात्मवाद के नाम से प्राचीन काल के ऋषियों ने वैज्ञानिक ढंग से जो दी थी, वही हम भी करेंगे। हमारा प्रयास है कि आपको पांच कोशों का जागरण करने की विधियां बताएं और जितना भी आपकी चलने की ताकत हो उस हिसाब से आगे चलाएं और धीरे धीरे चलते हुए आप वहां पहुंच जाएं जहां हमारे ऋषि मुनि पहुंचे थे। आप उसी रास्ते पर चला करें, बस इसी तरह का हमारा यह प्रयास है।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।